मेरे प्यारे युवा मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 5 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मित्रों, विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं कामेश्वर कुमार शाह, आप कटिहार बिहार से हैं, और विनोद कुमार यादव, आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो कामेश्वर और विनोद, आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, आज शुक्रवार है और आज के दिन मैं कुछ सूचनाएं देता हूं, तो पहले वो सूचनाएं दे दूं, इसके बाद फिर हम अपने काम की शुरुआत विधिवत तरीके से करेंगे। दोस्तों, सूचना यह कि शनिवार रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कल शनिवार को आप सबको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी, जैसे कि मिलती रहती हैं। लेकिन शनिवार को आपको कुछ और एडिशनल चीजें भी मिलती हैं, ताकि आपके संडे का जो दिन है वो अच्छे तरीके से बीत सके, थोड़ा सा उस दिन भी आपको बिजी रखा जा सके। तो दोस्तों, योजना के दो आर्टिकल आपको मिलेंगे, एक हिंदी और इंग्लिश का, और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी दो आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। कुल 4 आर्टिकल होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि टॉपिक भी 4 हों, क्योंकि हो सकता है कि इंग्लिश वाला ही हिंदी में हो, ऐसा भी अक्सर होता है। जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं, तो आप उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी एक आर्टिकल को चुन सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक वीकली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो मेन्स के पैटर्न पर होता है, आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। मैं फिर से आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस न करें, समझ विकसित करने के लिए प्रैक्टिस करें। जैसे ही आप प्रश्न पढ़ते हैं, आप बिल्कुल ये मत अनुमान लगाने की कोशिश कीजिए, खुद का मूल्यांकन कीजिए कि मैं इसे कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। ये इसके लिए नहीं है, आपके मूल्यांकन के लिए नहीं है, वो आपके विकास के लिए है, आपको मांझने के लिए है, आपके अभ्यास के लिए है। पहले भी मैं कह चुका हूं, आज फिर से कहना चाहूंगा कि उस प्रश्न को आराम से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके पॉइंट्स निकालिए, और अगर आप उस टॉपिक पर आपकी तैयारी नहीं है तो उस पर मटेरियल जुटाइए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर उसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारिए, थोड़ा जद्दोजहद कीजिए, तब सही मायने में आप उस वीकली क्वेश्चन का फायदा उठा पाएंगे। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, जो हमारे एकेडमी के स्टूडेंट रहे, क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं अपने उस हिस्से पर जो हम लोग लगातार करते रहे हैं। मित्रों, आज मैं प्री के बारे में थोड़ी सी आपसे बातें करने जा रहा हूं। पहली बात तो यह कि अभी भी बहुत से स्टूडेंट लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि हम अपने तैयारी की शुरुआत कैसे करें, और ये मुझे मालूम है कि हमेशा पूछा जाता रहेगा, क्योंकि लगातार नए नए स्टूडेंट डेली ऑडियो लेक्चर से जुड़ते हैं, तो ये उनकी स्वाभाविक इच्छा है, और उससे भी बड़ी बात है कि उनकी स्वाभाविक आवश्यकता भी है। तो मित्रों, मैं दो बातें आपसे बता दूं। पहली बात तो यह कि डेली ऑडियो के जरिए मैं जो भी बता सकता हूं वो तो लगातार बता ही रहा हूं, लेकिन मेरी दो किताबें आई हैं, आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग 1 और आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग 2। इसमें मेरी कोशिश रही है कि इन दोनों किताबों में मैं उन सारी समस्याओं को कवर कर लूं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकूं जो किसी भी स्टूडेंट के मन में किसी भी स्टेज पर उठ सकते हैं, उस दिन से लेकर जिस दिन से वो अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की शुरुआत करता है से लेकर जब वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेगा, वहां तक के प्रश्नों के उत्तर, तब तैयारी के तरीके को मैंने बताने की कोशिश की है। आप सब उस किताब को, उन दोनों किताबों को ले सकते हैं। अदरवाइज शुरुआत अगर आपको एक लेनी है तो बट नेचुरल है कि आपको पार्ट 1 से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरी बात मित्रों की, अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने YouTube पर कुछ प्रोग्राम डालने शुरू किए, एकेडमी ने डालने शुरू किए हैं। YouTube पर वो प्रोग्राम अवेलेबल है, हालांकि वो ठीक है धीरे धीरे आएंगे, लेकिन जो बिगनर हैं उनके लिए मुझे लगता है कि अगर उनको मुझ पर भरोसा है या मेरी गाइडेंस चाहते हैं तो वो अवेलेबल ऑलरेडी हैं। एक प्रोग्राम है जो 11 पिलर्स पर है कि सिविल सर्विस तैयारी करने के कौन से 11 मुख्य स्तंभ होते हैं, वो आप सुन सकते हैं, छोटा सा ही है। इसके बाद फिर हम एक एक पिलर्स को लेकर बातें कर रहे हैं, फर्स्ट पिलर, सेकेंड पिलर्स, थर्ड पिलर्स, और अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले ही फोर्थ पिलर्स उसमें अवेलेबल कराया गया है। और उसकी खासियत है कि एनसीईआरटी की किताबें आप कैसे पढ़ेंगे इस पर फोर्थ पिलर है, एनसीईआरटी की किताबों का सही उपयोग कैसे करेंगे, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर है, वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ मेल आए हैं, पहले भी आए थे, और उसमें उन्होंने जानना चाहा है कि सर जो हिस्ट्री की किताबें हैं एनसीईआरटी की, वो ओल्ड एडिशन है और न्यू एडिशन है, तो हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। देखिए, मैंने दोनों एडिशंस को बहुत ध्यान से देखा है, उन्हें पढ़ा भी है। दोनों में जो बेसिक अंतर है, देखिए, ओल्ड और न्यू में हम उसको जानते हैं। जो ओल्ड एडिशन के एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें कंटेंट दिए, मतलब तथ्य दिए गए हैं, है ना, कब कौन राजा था, कहां लड़ाई हुई, इस तरह की बातें कही गई, बताई गई है। मुझे लगता है कि इतिहास में इसको भी जानना जरूरी है, जानना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हम घटनाओं को नहीं जानेंगे तब तक उनको जानना थोड़ा सा मुश्किल होगा जो न्यू एडिशन में है। न्यू एडिशन में उन घटनाओं पर आधारित निष्कर्ष दिए गए हैं, यानी कि इतिहास का एक स्वरूप दिया गया है। ओल्ड एडिशन में इतिहास के तथ्य दिए गए हैं, टुकड़े टुकड़े में बात कही गई है, जो हम किसी भी इतिहास की किताब में पाते हैं। हम लोगों के समय में इतिहास इसी तरीके से पढ़ाया जाता था और हम लोगों ने उसी तरीके से पढ़ा है। अब जो इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने की जो पद्धति है, उसके प्रति जो दृष्टि है, वो काफी बदल रही है। अब मान के चलते हैं कि कौन राजा था, किस सन में हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे लड़ाई लड़ी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि उसके रीजन क्या थे और उससे हमारे समाज राजनीति का विकास किस तरीके से हुआ और उसके क्या ड्रॉबैक रहे, क्या उसकी उपयोगिताएं रहीं, इन सब पर ज्यादा जोर है। यानी यूं कह लीजिए कि फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, तो न्यू एडिशन में फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ज्यादा है। अब सवाल है कि आपको कौन सा पढ़ना चाहिए। मित्रों, पतली पतली किताबें हैं और आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इनफैक्ट मेरी सलाह यह होगी कि आप दोनों को पढ़ें। लेकिन यदि दोनों में से ही किसी एक को चुनना है, आपने फैसला ही कर लिया है कि नहीं मैं एक को ही पढ़ना है मुझे, तो फिर डेफिनेटली न्यू एडिशन को पढ़िए, क्योंकि न्यू एडिशन आपको मेंस में आपकी मदद करेगा। प्री में तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशियंट इंडिया से, फिलॉसफी की जो हमारी फिलॉसफी रही है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़े से कल्चर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, और मेडिवल इंडिया की जो इवेंट बेस्ड जो तथ्य होते हैं उन पर प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। इसके बाद प्री में भी जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रीडम मूवमेंट से पूछे जाते हैं, राइट? तो फ्रीडम मूवमेंट के लिए आपको न्यू एडिशन आपकी मदद करेगा। नो डाउट कि अगर आप उसे कंटेंट के साथ भी जोड़ देंगे, ओल्ड एडिशन के साथ भी जोड़ देंगे, तो ये आपकी न्यू बहुत पुख्ता हो जाएगी, आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके बाद थोड़ी सी आप फ्रीडम मूवमेंट पर कोई दूसरी किताब भी पढ़ लें, जो मैं विपिन चंद्रा की किताब जनरली सजेस्ट करता हूं, मुझे वो किताब अच्छी लगती है, क्योंकि जो फ्रीडम मूवमेंट है उस पर आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेंस में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके उत्तर, अच्छे उत्तर, केवल एनसीईआरटी की किताब से दिए जा सकते हैं। तो मित्रों, ये इतिहास के अध्ययन के बारे में जो मुझसे प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर है। दोस्तों, आइए, काफी वक्त हो गया है और अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों, न्यूज आपने सुनी होगी, कल के न्यूज में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आधार बनाकर हम आज कुछ चर्चा करें। ब्रिटेन और भारत में जो अवैध प्रवासी रह रहे हैं उस समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है, वो एक न्यूज थी। दूसरी, कंटेंट के रूप में खासकर जो मध्य प्रदेश और जो आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा उपयोगी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के 2 शहर फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन में रहे हैं स्वच्छता के मामले में, इंदौर नंबर 1 पर और भोपाल नंबर 2 पर, और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम नंबर 3 पर। तो एक छोटी सी घटना है, और चूंकि जो स्वच्छता अभियान है वो हमारे एक तरह से फ्लैगशिप प्रोग्राम में है, बहुत महत्व इसको दिया जा रहा है स्वच्छता अभियान को, तो उस लिहाज से कंटेंट भी है कि आप उत्तर लिखते समय अगर एप्रोप्रिएट जगह मिलती है, गुंजाइश निकलती है, तो आप इस फैक्ट को उसमें डाल सकें। मित्रों, और न्यूज में कोई खास बात नहीं थी। दोस्तों, अब मैं आज चूंकि यह समय है और रेडियो आपके अखबारों में भी कुछ खास नहीं है, हमारे पास अभी 6-7 मिनट बचे हुए हैं, तो इसका इस्तेमाल मैं रामानुजाचार्य के बारे में थोड़ा सा करना चाहूंगा, जो मैंने आप लोगों से पहले वायदा भी किया था और कुछ स्टूडेंट ने ईमेल लिख करके मुझे स्मरण भी कराया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। हालांकि मुझे स्मरण था, लेकिन फिर भी आप लोग जब अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं तो जो सामने वाला है वो उत्साहित हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है कि नहीं, सुनने के लिए विद्यार्थी उत्सुक हैं। और जब उत्सुकता होती है तो जो सुनाया जाता है उसकी वक़्त बढ़ जाती है, उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है और फिर उसका रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मित्रों, मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, जितना भी वक्त मुझे इजाजत देगा। जो रामानुजाचार्य हैं, उनको वैसे नाम उनका रामानुज है, आपने न्यूज में देखा होगा जब डाक टिकट जारी किए गए थे तो उनका जो जन्म माना गया है वो 1017, और अभी उनकी 1000वीं जयंती मनाई जा रही, हम ये कह सकते हैं। जो रामानुजाचार्य हुए थे वो साउथ इंडिया के थे, दक्षिण भारत के थे। तो दक्षिण भारत में जो कांचीपुरम के निकट एक जगह है श्री पेरुपुथूर, वहां उनका जन्म हुआ था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कम से कम दक्षिण भारत के स्टूडेंट्स को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। देखिए, जो आर्ट और लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनको ये बात की, इस बात की जानकारी हो सकती है, लेकिन जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट हैं मुझे मालूम है कि उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। एक लंबी उम्र रामानुजाचार्य को मिली और इन्होंने जो सिद्धांत, जो दर्शन स्थापित किया है मित्रों, उसका नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। ये विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, इसको लेकर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें एक ग्रंथ था श्री भाष्य, और भी दूसरे ग्रंथ लिखे, और उन ग्रंथों के आधार पर जो उनकी दार्शनिक प्रणाली विकसित हुई उसको हम कहते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा मित्रों। ठीक इससे पहले लगभग मैं समझता हूं कि 300 साल पहले, ऑलमोस्ट 250-300 साल पहले, फिर से साउथ में ही एक बहुत महान दार्शनिक हुए थे, शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जिस सिद्धांत की स्थापना की थी, शायद उसके बारे में आप जानते होंगे क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर है, वो था अद्वैतवाद। ये अद्वैत क्या है, देखिए, अ तो निगेटिव वर्ड यूज होता है, विपरीत शब्द के लिए अ लगा देते हैं, काल समय, अकाल बुरा समय, अ लगाने से बुरा हो गया, अपोजिट हो गया। तो द्वैत का मतलब है दो, अद्वैत का मतलब हो गया दो नहीं, दो को निगेट कर रहा है, दो नहीं। तो ये दो कौन है, दो कौन, किस दो की बात हो रही है, ये दो है दोस्तों, एक तो ब्रह्म ईश्वर जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, एक तो वह है, और दूसरे हैं हम सब जीव प्राणी, हम दूसरे हैं। अब शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है यानी कि जो ईश्वर है और जो हम हैं वो अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक हैं। उन्होंने बहुत खूबसूरत उदाहरण दिए हैं, मैंने इस डेली ऑडियो में उनकी चर्चा भी की है, कैसे एक है। जैसे उन्होंने कहा कि आग जल रही है, अब आग से चिंगारियां छिटक रही हैं, तो ये जो चिंगारियां हैं उस आग से ही निकली हुई हैं, उसी का हिस्सा है, तो हम उस चिंगारी की तरह हैं जो उस ब्रह्म से निकले हुए हैं। इसके बाद फिर वो एक बात कहते हैं कि ये जो संसार है, अब तीसरा आ गया है जो संसार है, जिसे वो माया कहते हैं, माया, ये जगत माया है, ये शब्द आपने खूब सुना होगा, ये माया है, ये संसार है, मोह माया है। जब जीव जन्म लेता है तो इस माया के चक्कर में पड़ जाता है, और जैसे जैसे वो माया के चक्कर में पड़ता है वो ब्रह्म से दूर होता चला जाता है, यानी कि अपने मूल स्वरूप को वो भूलता चला जाता है, ब्रह्म से दूर चलता चला जाता है, ये उन्होंने कहा। और अभी भी संभावना है, अब जैसे जैसे वो माया को अपने से अलग करता जाएगा वो फिर से ब्रह्म के नजदीक आ जाएगा, और यहां तक कि वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, क्योंकि वो वही तो है, जैसे एक चिंगारी छिटक करके गई है और फिर से आकर के वो अग्नि में समा सकती है, या एक गोल्ड है, गोल्ड से आपने आभूषण बना लिया तो गोल्ड ब्रह्म है, आभूषण जीव हो गया, उसका रूप रंग बन गया, उस आभूषण को गला दीजिए और गोल्ड में मिला दीजिए तो फिर वो गोल्ड का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि ये दोनों अलग नहीं है, माया के कारण अलग हो जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जैसे जैसे वो माया को अलग करते हैं फिर से एक हो जाते हैं, ये शंकराचार्य जी ने कहा, ये अद्वैत दर्शन। रामानुजाचार्य जी ने कुछ नहीं, इसका कुल मिलाकर के ये कि शंकराचार्य का विरोध किया कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। यह बात ठीक है कि जो प्राणी है या पूरा का पूरा जो भौतिक जगत है, यह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ईश्वर से ही पैदा हुआ है, उसको उन्होंने नहीं नकारा, ईश्वर से ही पैदा हुआ है। और विशिष्ट द्वैतवाद के तहत रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, ये जो माया है ये भ्रम नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, ये जगत है, ये झूठ कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने जो विशिष्टाद्वैत है, देखिए उन्होंने कहा कि इनमें अद्वैत तो है, दोनों कहीं ना कहीं एक हैं, इसके बावजूद दोनों में भिन्नता भी है। वो भिन्नता कैसे है, बस उसको आप समझ लीजिए, फिर मैं आज के इस विषय को खत्म करूंगा। वो भिन्नता इस रूप में है मित्रों की, जैसे ईश्वर तो है वो संपूर्ण है, कंप्लीट है, और जो हम हैं वो उसके अंश हैं, उसके टुकड़े हैं। तो एक संपूर्ण और एक टुकड़ा बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। टुकड़े में संपूर्णता तो आ ही नहीं सकता, कोई भी एक संपूर्ण या यूं हम कहें कि कोई भी एक छोटा सा अंश, जैसे मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी चट्टान है वो ब्रह्म है मान लीजिए, और उसमें से आप एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लीजिए तो है तो वो उसी के हिस्से से, लेकिन ये जो टुकड़ा है ये चट्टान की बराबरी तो नहीं कर सकता। एक समुद्र है, समुद्र में इतना जल है, और अगर उसकी हम एक बूंद निकाल लें तो उस बूंद में ठीक है लक्षण उसके सब है, लेकिन वो उसके बराबर तो नहीं है, वही तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है, विशिष्ट है, विशिष्टाद्वैत। इसी को दोस्तों कहा गया विशिष्टाद्वैतवाद, और विशिष्टाद्वैतवाद के तहत रामानुजाचार्य ने इस माया जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया। और शंकराचार्य जहां ये मानते थे कि ईश्वर निर्गुण है, एक है, एकेश्वरवाद को कि उन्होंने मान्यता दी कि ईश्वर केवल एक ही होता है, ब्रह्म केवल एक ही होता है, उसका कोई रूप रंग नहीं होता, वहां रामानुजाचार्य ने कहा कि नहीं, ईश्वर सगुण होता है, उसका रूप रंग होता है, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सूंघते हैं, ठीक उसी तरह से ईश्वर के भी हाथ पैर हैं, वो सगुण है। और आप याद ध्यान दीजिए कि जब आपने ईश्वर को सगुण मान लिया तो स्वाभाविक है कि अब ईश्वर की पूजा शुरू हो गई। और एक बहुत बड़ा योगदान रामानुजाचार्य का रहा है कि रामानुजाचार्य के बाद जो ये परंपरा चली ईश्वर को सगुण मानने की, विशिष्टाद्वैतवाद की, यहीं आगे चल करके फिर रामानंद हुए, रामानंद के शिष्य कबीर हुए, और फिर आगे जो भक्ति काल हमारा आया, जो हिंदुस्तान के साहित्य कला और कला तो नहीं लेकिन साहित्य और संस्कृति का सबसे अद्भुत काल रहा है, आप कह सकते हैं कि उसके बीज, उसके दार्शनिक बीज रामानुजाचार्य जी में निहित हैं। दोस्तों ये रामानुजाचार्य जी के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, अब इनका जो एक सोशल एस्पेक्ट रहा है उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। मैं अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक की कंप्लीट तैयारी उस माध्यम से करा दूंगा। तो मित्रों जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको आज बहुत थोड़ी सी क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आता हूं अब ईमेल पर। दोस्तों मुझे एक स्टूडेंट का ईमेल मिला है जिन्होंने सूचित किया है कि जागरण में के संपादकीय पृष्ठ पर उन्होंने मेरा कोई लेख पढ़ा है जो उन्हें पसंद आया। मुझे वह लेख अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है, तो अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप उस आर्टिकल को मेरे पास भिजवाने की कोशिश करें, या तो मेल पर भेज दें या व्हाट्सएप कर दें, जैसे भी संभव हो, यदि आपके लिए पॉसिबल है तो वो लेख मेरे पास जरा सा भिजवाने का कष्ट करें। दो स्टूडेंट के और मेरे पास मेल हैं मित्रों, जो उसमें एक है मनीष नगुल वार और एक है राम किशोर इनानिया जो गुरुग्राम से हैं। इन्होंने यूपीएससी इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, इसके लिए मैं मनीष को और राम किशोर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल चूंकि वक्त नहीं है और हम देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी देख भी चुके हैं, तो अभी मैं वो क्वेश्चंस तो आप लोगों को नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी यह निभाई, इसके लिए डेफिनेटली वो प्रशंसा के पात्र हैं। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से फिर से कुछ दोस्तों के नाम हैं, हिमानी गर्ग, जयप्रकाश कुमार आरा बिहार से, शीतल सोनी बोकारो झारखंड से, स्वाति मोहिनी शर्मा, अमन अलून, हनी सिंह मुंबई से, धीरेन्द्र शुक्ला हरदोई उत्तर प्रदेश से, हरीश वेलकर, प्रशांत गर्ग और चंदन सिंह, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दो दिनों के बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजरने के लिए। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।